नानक निरन्तरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रायते कृष्णाय कृष्ण समझ में नहीं आता है। पहला दूसरा जो चैप्टर है वो दरवाजा है, यदि थोड़ा सा किसी के समझ में आ जाए तो पूरा दरवाजा खुल जाता है, एकदम अंत तक ठीक समझते समझते चला जाए। और पहला और दूसरा चैप्टर नहीं समझेगा तो उसके लिए बड़ा भारी कठिन है। भगवान की सेवा करना ही ये परम धर्म है। हम कृष्ण के अंश हैं और वो ऐसा अंश है जो कृष्ण को से निकलने पर भी वो कृष्ण का कुछ अंश हानि नहीं होती, वो पूरा रहता है। और कृष्ण में जो जो गुण हैं उन जीवों में भी गुण है, वो बहुत आंशिक रूप में। कृष्ण में प्रेम है, जीवों में भी वो प्रेम है, ये कभी भी ध्वंस नहीं होने का यह प्रेम। इसलिए प्राणी मात्र में जहां देखेंगे, बाघ भालू भी हो, सुअर कुकर भी हो, गधे भी हो, जरूर किसी न किसी रूप में प्रेम झलकता है। अपने बच्चों को अपनी स्त्री से जो उनको कुछ सुख देता है उनके प्रति उनकी प्रीति हो जाती है। हमने देखा भी और सुना भी है ऐसा, ये कुछ लोग 10 20 50 सांप जहरीले रख करके उनके बीच में बैठे रहते हैं और उनको नहीं काटते। बाघों के बीच में भी बैठे रहते हैं, उनको नहीं काटते। तो ये जीवात्मा में जो प्रीति है भगवान के प्रति प्रीति पूर्वक सेवा करने की, ये कभी भी ध्वंस नहीं होती, वो कुछ छिप सी जाती है, आच्छादित हो जाती है। जो ही वो भगवान का कुछ विमुख होता है, तो कब विमुख हुआ, कभी ऐसा नहीं जो कभी उन्मुख था और पीछे से विमुख हुआ, ऐसा नहीं। भगवान की सेवा कर रहा था और फिर वहां से भगवान को भूल करके इस जगत में आ गया, ऐसा नहीं। यदि ऐसा कहेंगे तो गड़बड़ी ये होगी कि इस जगत में जो आनंद जो दिख पड़ता है वो उस जगत से अधिक है इसमें, इसलिए ऐसे आनंद को जो कृष्ण की सेवा थी उसको छोड़ करके इसमें आ गया, किंतु ऐसा किसी शास्त्र में नहीं दिखा और न कोई ऐसा कहता है। उस जगत में आनंद अधिक है, जहां किसी को आनंद मिलता है प्रीति मिलती है। आनंद माने क्या, प्रीति प्रेम प्यार जहां पर मिलता है वह व्यक्ति वहीं पर आना चाहता है, जहां पर प्रीति नहीं है वहां पर नहीं रहना चाहता। तो यदि उस जगत को छोड़ करके इस जगत में आ गया था इसका मतलब उससे ये अच्छा है, इसलिए कोई वहां से भगवान को भूल करके यहां पर चला आता है, किंतु यह बात गलत है। इसलिए ये बतलाया हमारे शास्त्रकारों ने चीज को समझाने के लिए, केवल बेसिक आजकल शिक्षा चल रही है, बेसिक शिक्षा मैंने फोटो चित्र इत्यादि के माध्यम से बच्चों को सहज रूप में समझाने की एक प्रक्रिया चलती है। उसी चीज को समझाने के लिए कहा, जीव जैसे भगवान नित्य हैं, नित्य काल, वैसे जीव भी नित्य हैं। अच्छा, पहले सूरज निकला कि उसकी किरण निकली? कौन निकला पहले, विचार करके देखिए। हम लोग विचारक हैं, बुद्धि भगवान ने दी है, इसका यूज करना चाहिए, मूर्ख की भांति नहीं, उसका उपयोग ही नहीं करें। हाँ, इसके बाद में उनकी किरण निकली और उनकी अंदर में सूरज में जो ताप है, ताप माने गर्मी और प्रकाश, ये पहले निकला ना पीछे वो? हाँ, और इसके बाद में सूरज आया? बात ठीक है, हम पहले रोशनी देखते हैं यहाँ, इसके बाद में उससे ताप आता है, और इसके बाद में जब देखते हैं तो सूरज को देखते हैं। किंतु जब से सूरज है तब से उसमें ताप है और तब से उसमें रोशनी भी है, आगे पीछे नहीं हुआ, जब से है तभी से। यदि भगवान को सूरज मानते हैं तो जीव को क्या किस स्थान में तुलना पत्र लिया जाएगा? सूरज की किरणों में जो छोटे छोटे कण जो चमकते हैं वो है किरण, नहीं किरण शक्ति है ना, ऐसा नहीं, किरण जो है वो शक्ति स्थानीय है, पराशक्ति, जड़ा शक्ति, माया शक्ति इत्यादि के रूप में, उस शक्ति के अंदर में अतः सूरज की किरणें आती हैं। एक घर में, एक कमरे में एक कोई छेद है, उसे होकर के आती है, कोटि कोटि परमाणु उसमें झिलझिल झिलझिल करते रहते हैं, वो धीरे धीरे बैठ करके यहाँ पर धूल धूल सब जम जाता है, ये सब छोटे छोटे कण हैं। तो भगवान नित्य हैं, उनमें किरण अर्थात शक्ति भी नित्य है और ये जीव इसमें जो दिखाई पड़े ये भी नित्य हैं। हम लोग यहाँ पर हवा के वातावरण में जो असंख्य जीव है हम लोग देखने का, अभी हम गिने तो 50 आदमी हम लोग यहाँ पर हैं, एक दो गिन करके गिनिए कितने आदमी हैं। किंतु आप देखेंगे सूक्ष्म रूप में, यहाँ पर मकड़ी होगी, होगी कि नहीं, मक्खी होगी, मच्छर भी दो एक हो सकते हैं, कितनी चींटियां हैं, और इस परमाणु में ले जाने कितने जीव जंतु होंगे, और एक बूंद इसमें से निकाल दिया जाए रक्त और उसको देखा जाए अच्छी तरह से दूरबीन से तो लाखों कोटि जीव इसमें, वो रक्त क्या चीज है, वो छोटे 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 परमाणु, और वो यदि हमारे जैसे शरीर धारण कर ले तो क्या होगा, पृथ्वी भर जाएगी एक बूंद रक्त से ही। विचार करने में सिर चकरा जाता है, ब्रह्मा भी पार नहीं पाते हैं और की तो बात क्या, बलदेव जी भी पार नहीं पाते, इसलिए सब चीजें वो नित्य हैं। किंतु ऐसा सूक्ष्म विचार है जो कुछ जीव उनकी नित्य सेवा करते हैं, वो भगवान के परिकर कहलाते हैं, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ये संसार नाम की कोई चीज है, उनको पता नहीं है कि माया नाम की कोई चीज है और जन्म मृत्यु होती है, उनको कुछ पता नहीं। और कुछ ऐसे जीव हैं जिनको ये पता नहीं कि वैकुंठ क्या है, नित्य चीज क्या है, नित्य आनंद क्या है, भगवत प्रेम क्या है, वैकुंठ की कैसी स्थिति हम नहीं जानते। तो ये जो जीव हैं ये नित्य हैं या अनित्य हैं, जिनको ये पता नहीं है ये भी नित्य हैं। नित्य होने पर भी इनकी पोटेंसी तो नित्य है, उनका शरीर ये जो है ये नित्य नहीं है, ये दार्शनिक चीजें हैं। अब वो जो भगवान से जीव जो निकले हैं, जो सब समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको मुक्त जीव कहते हैं, और इस संसार में जो पड़े हुए जीव हैं ये बद्ध जीव कहलाते हैं। ये बद्ध कब हुए? जीव का स्वरूप है चिन्मय चेतन, अज्ञानता उसमें नहीं है। इनको आ गया अज्ञानता कब आ गई? कहते हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ो, वो अनादि है। अनादि एक शब्द जोड़ दिया, अनादि मैंने जिसका आदि नहीं है, तब से ये है। उनका तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो छोड़ दीजिए जो नित्य सेवा कर रहे हैं। हम लोग इस जगत में जो जीव हैं, ये भी अनादि हैं। ये कब से बद्ध हुए इसका कोई इतिहास नहीं है। अब इसीलिए कहता है इस चीज को याद रखेंगे, जो वहां के जीव जीव हैं उनको अज्ञानता कभी नहीं होती है, और वो इतने आनंद में भरपूर हैं कि वो भगवान के विमुख हो ही नहीं सकते। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, वो कभी नहीं वहां से आ सकते हैं। नहीं तो यदि आते हैं तो सब शास्त्रों की थ्योरी सब गड़बड़ हो जाएगी, तब इसका यही नतीजा होगा उस जगत से इस जगत में आनंद अधिक है, किंतु ये किसी हालत में नहीं स्वीकार किया जाए। अब ये जीव हैं इस जगत में कब आए, इसके लिए शास्त्रकारों ने समझाने के लिए कहा। किस तरह से समझाने के लिए? एक छोटे से बच्चे को जो अभी कुछ नहीं जानता, मास्टर ने कहा जैसे ये अ है ना, उन्होंने कहा कैसे आया है, कैसे ये तो ख है या क है। अब आप उसको समझा दीजिए जैसे ये ख नहीं है अ है, समझा सकते हैं? इसी को एक्सियम कहा जाता है। एक्सियम माने क्या? मान लो अभी तुम नहीं समझाया, मान लो
ये आए
लेट ए बी एनी अमाउंट, और उसे लेकर के बड़े बड़ी संख्याओं को बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसको नहीं मानने से नहीं चल सकता, इसलिए इसको मानना पड़ेगा ये अ है, और इसी लाइन में सबको शिक्षा दिए ये अ आ ई उ अनादिकाल से चल रहा है, और इसी से ज्ञान सब लोगों को हो रहा है। ये कल्पना नहीं है, कल्पना भी है, कल्पना नहीं तो और क्या है, किंतु इसके द्वारा रियलिटी में हम पहुंच जाते हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि उस जगत में जितना आनंद है इस जगत में नहीं है, और जीव अनादि है, और जीव भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, तो भगवान में जो गुण है जीव में होना चाहिए। भगवान में अज्ञानता नहीं है तो जीव को कब से अज्ञानता हो गई, क्यों हो गई, इसके लिए शास्त्रकारों ने कहा है। अब नीचे से चलो, अब यहीं पर सपोज करो, आपको समझाने के लिए दूसरा कोई चीज नहीं, अ कहो नहीं है, आप कैसे क्यों है, ये तक नहीं चलेगा। मान लो ये तुम्हारे पिताजी हैं, मानने के अतिरिक्त तो कोई चारा है? कोई कह सकता है कि हमने देखा कि हमारी माता से अपने पिता के द्वारा मैं पैदा हुआ पुत्र हूं? कोई कह सकता है संसार में है कोई प्रमाण? मैया का कहना ही। उसी तरह से शास्त्र जो है गुरु हैं ऐसे रियलाइज, या स्वयं कृष्ण ही जगत गुरु हैं, उन्होंने शास्त्रों में इस चीज को लिखा, इसलिए हमको मान लेना पड़ेगा। जीव का तो कभी अनादि है, पहले बतलाया, नित्य है और ज्ञान युक्त है, तो वो जो भगवान से विमुख हुए ये क्या है? ये तटस्थ शक्ति से निकले हैं, भगवान से पैदा हुए हैं, ये सब कल्पना है। किंतु हम लोगों को समझाने के लिए उन लोगों ने कहा जैसे बिना इस ज्ञान के तुम आगे नहीं बढ़ सकता है। अब एक साधारण चीज में देखिए, एक बच्चे का जन्म हुआ ना, जन्म हुआ तो ठीक है कि गलत है, मतलब ये उस बच्चे का जन्म हुआ ये ठीक है कि गलत है? किस चीज का जन्म हुआ? मट्टी का न, हवा का जन्म हुआ न, पानी का न, आग का, यही सब मिला करके तो ये शरीर है, तो इसका जन्म हुआ? अच्छा, आत्मा तो नित्य अजर अमर है, उसका तो जन्म मरण है, तो किसका जन्म हुआ, हुआ किसका? तो जीवात्मा जो है उसका जन्म कैसे होगा, उसका प्रकट कैसे होगा? किंतु हम लोग नहीं समझेंगे प्रारंभ में, लेट ऐसा सपोज किया। वैसे हमारे शास्त्रकारों ने, कृष्ण ने भी ऐसे ही एक सपोज करके बतलाना आरंभ किया। क्या ये तो समझेंगे नहीं, क्योंकि ये स्थूल विचार वाले हैं। इसलिए कहा कि जीव भगवान से प्रकट होता है, यह बात गलत है कि नहीं है? यदि जीवात्मा नित्य है, भगवान भी नित्य हैं, तो किससे किसका जन्म हुआ? वो तो है ही है, जैसे भगवान जब से हैं तब से ये भी है। तब ये सब बातें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी असल में यदि पूछा जाए ना, आप लोग अभी नहीं समझेंगे, बद्धावस्था काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। यदि जीवात्मा चिन्मय है, चेतन है और नित्य वो है, तो ये अचेतन का भाव जो ये अज्ञानता, ये कहां से आया? भागवत में कहा गया ये कल्पना है। किसकी कल्पना हुई? जो नहीं जानते हैं उनकी कल्पना है। और शास्त्रकारों ने हमें समझाने के लिए ऐसी सब बातें कही, ये जीव भगवान से पैदा हुआ और भगवान की कोटि कोटि शक्तियां हैं, वो भगवान से भी निकलती हैं। हम तो देखते हैं कि भगवान शक्ति के माध्यम से निकलते हैं, यदि शक्ति न रहे तो भगवान कहां से निकलेंगे? किंतु नहीं, शक्ति भी नित्य है, शक्तिमान भी नित्य है, जीव भी नित्य है। और ये जो चल रहा है प्रवाह, मट्टी जल वायु इत्यादि का जो मिल करके ये ढांचा शरीर बनता है, ये मिट्टी के समान है। एक मिट्टी को लीजिए, उसको पानी दे दीजिए और पानी में मिला करके फिर उसको गीला करके और उसको बना लीजिए कोई चीज, आम बनाइए, सुअर बनाइए, बैल बनाइए, घोड़ा बनाइए, आदमी बनाइए, परी बनाइए, देवता गणेश जी को बना लीजिए, शंकर जी को बना लीजिए, फिर उनको बड़ा बिगाड़ करके एक जगह करके फिर दूसरा बना लीजिए। मट्टी तो मट्टी के स्थान पर वो ठीक है, आग उतना ठीक है। इसलिए जीवात्मा नित्य है, किंतु इस जगत में कैसा है? इस चीज को ये बतलाते हैं, जीव प्रकट हुआ, यथार्थ में जीव प्रकट नहीं हुआ वो है भाई। तो ये प्रश्न आएगा, जब प्रकट हुआ तो कब हुआ? इसलिए कहा जाए, इसके लिए चिंता मत करो, ये अनादि। अनादि माने इसका समय नहीं है, तुम्हारे सोचने के पहले से ये जगत तो होने के पहले से ये है अनादि का। नित्य नहीं, नित्य में और अनादि में बहुत अंतर है। नित्य किसको कहते हैं? वो सब समय है। अनादि है समय, किंतु उसको निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, ये दार्शनिक शब्द है। अब चलिए ठीक, अब ये कहा गया कि जीव भगवान से प्रकट हुआ। अब पहले मैंने बतलाया जैसे वो नित्य है वो भी नित्य है, ये बतलाया गया किसके लिए? जो नहीं एकदम समझता है कख कख धर्मराज्य में, उनके लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए कहा गया। तो कहां निकले? बैकुंठ जगत में। तो बैकुंठ जगत में इतना आनंद है कि वहां से आ नहीं सकते थे, और जीव इस जगत में पैदा हो नहीं सकता, इस जगत का वो है नहीं, वो तो चिन्मय है, अजर अमर है, नित्य शाश्वत है, नित्य आनंदमय है। इस जगत में तो मिट्टी जल वायु आकाश यही पैदा हो सकता है इस ब्रह्मांड में। तो फिर कहा? इसीलिए कहा ये दोनों के बीच में हुआ, इसी को तटस्था शक्ति कहते हैं, दोनों के बीच में। तटस्था शक्ति क्या है? अरे देख लो, मान लिया कि एक तरफ में पानी है, एक तरफ में जल है, तट किसको कहते हैं? तट माने वह डिमार्केशन लाइन जो पानी और धरातल के माने मट्टी के बीच में है। अच्छा, मान लिया जैसे किसी नदी में है, यमुना नदी में या समुद्र में तट होता है। अब नदी में वर्षा हुई ना, जो तट पहले बहुत नीचे था, अब पानी जब भर गया तो तट कहाँ आ गया?
ऊपर आ गया।
कैसे आ गया?
पानी भर गया।
तो ये तट भी चलता फिरता है। तट किसको कहते हैं? उत्तर तट तो अच्छा, तट में तट जो है ये जमीन है ना, मिट्टी पर है, मथुरा गंगा के तट पर बसा हुआ है, ये ठीक है कि गलत है? गलत है। तत उस सूक्ष्म रेखा को काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो जल और स्थल के बीच में एक काल्पनिक लाइन है, जो पानी बढ़ने के साथ साथ में वो रेखा ऊपर हट जाती है और पानी कमने के साथ साथ में वो अचमान लेके एक तालाब है, तालाब का तो तट है ना, अब वो तालाब सूख गया, अब तट कहाँ है? है अब तट ही नहीं रहा क्योंकि पानी सूख गया, वहां पर जल और थल होना चाहिए ना। जल को मान लीजिए बैकुंठ और स्थल को मान लीजिए ये ब्रह्मांड, माइक ब्रह्मांड, इनके बीच में वह काल्पनिक रेखा जहां से वह जीव अनादि होने पर भी नित्य होने पर भी वहीं से उसकी पैदाइश है, पैदाइश नहीं है किंतु किस लिए कह रहे हैं समझाने के लिए, बिना ऐसे कहे हुए समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए ऐसा कहा है। कृष्ण ने भी ऐसा किया है, शास्त्रकारों ने भी, गुरु ऐसे ही ठूल चीज से सूक्ष्म में ले जाते हैं। अब ये तटस्था क्या है, न तो माया है और न बैकुंठ है, दोनों के बीच की एक काल्पनिक रेखा मान ली गई, उसी जगह में तटस्था शक्ति रहती है, ये भी काल्पनिक चीज, किंतु इसको अभी सत्य मान करके चलना पड़ेगा समझाने के लिए। अर्थात तो वो चिन्मय भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, तो ऐसी क्या चीज है, ये जीवित भी नहीं है, मरा हुआ भी नहीं है, ये यशोदा के पुत्र हैं और किसी के पुत्र नहीं है, ये झूठ भी बोल रहे हैं सच भी बोल रहे हैं, ऐसा कभी होता है? अभी दिन भी है रात भी, ऐसा होता है? नहीं, किंतु शास्त्रों में ऐसी बातें हैं ये समझाने के लिए है। तो तटस्था रेखा तटस्था से ऐसी है जो बैकुंठ भी नहीं है, चिन्मय भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, तो बीच में क्या चीज है, उसी जगह संकर्षण के जो अंश है कर्णाब्धि विष्णु वहां पर रहते हैं। कर्णाब्धि माने क्या, जैसे लवण सागर है ना, लवण सागर माने क्या,
पानी नमक
है। अभी जो हम लोग चारों तरफ जगत में देखते हैं वो पानी उनका कैसा है,
नमकीन,
ये लवण समुद्र का है। एक है इच्छु समुद्र, इच्छु माने गन्ने का रस जो होता है, एक क्षीराब्धि, क्षीरोद, क्षीरोद माने क्या होता है, दूध, दूध का समुद्र, अमृत सागर है ना। तो यहां पर कारण समुद्र माने क्या, कारण समुद्र, पानी नहीं, वो पानी वहां पर कारण है, किस चीज का कारण, सृष्टि का कारण और जीवों के इस जगत में आने का कारण, इसलिए उसको कारण कहते हैं कर्णाब्धि चाहिए ना? पानी से लबालब भरा हुआ है और उसमें विष्णु शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबाए इत्यादि रही, ये वो जो गम्य सरल रूप में समझाने के लिए कहा गया, किंतु कारण क्या, कारण कैसे, जैसे ये पहले बनाया गया घर, इसके पहले जब यहाँ घर नहीं था किसी ने इसको खरीदा, क्यों खरीदा, तो कारण क्या है, उसके पास में घर की कमी थी, वह कमी महसूस कर रहा था, उसने सोचा ये जमीन लेंगे और उसमें इंजीनियरों के द्वारा उसका प्लान बनाएंगे और प्लान बनाने के बाद में उसको इस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा ये जब तक जमीन नहीं खरीदा था तब तक ये प्लान आया कि नहीं, तो ये सब का कारण कौन हुआ, वो जो हमको अभाव था उसको पूरा करने के लिए हम जमीन लेंगे, यहाँ पर घर बनाएंगे, ऐसे से प्लान, घर का प्लान कैसे किया, पहले मन में किया ना, पहले ले करके वहां पर बनाया, मन में हुआ ना, इंजीनियर से कहा हमको ऐसे घर की जरूरत है, अटैच बाथरूम होना चाहिए, एक हॉल घर होना चाहिए जिसमें कुछ लोग आए तो उसमें बैठ सके, साथ ही साथ में रसोई घर होना चाहिए, उसकी सीढ़ी ऐसे होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, सब तो प्लान कहेगा ना, मन में वो बनाया और फिर इस फूल रूप में ये खड़ा हो गया। तो ऐसे ही इस जगत के उत्पन्न होने का कारण जहां पर है वो कहां से आया, वही भगवान की इच्छा, उसी में शयन कर रहे हैं, मैंने वहां पर वो हैं कहां, वो तो गोलोक बैकुंठ में है, अब वो जो इच्छा हुई उसका जो रूप बना उसको कर्णाब्दी साई भीष्म कहा गया। वहां पर असंख्य ऐसे ब्रह्मांड हैं, कल्पना कीजिए असंख्य, एक दो नहीं। और वहां पर उनकी इच्छा से वो जो नित्य जीव, जब ही तक उनका कोई स्थूल शरीर नहीं था, भगवान की सेवा में भी नहीं थे, माया में भी नहीं थे, और वैकुंठ जगत में उनको सेवा भी नहीं प्राप्त थी, ऐसे भी कुछ जीव होते हैं। क्यों? या तो बद्ध ही रहे ना मुक्त रहे, दो ही हो, एक तीसरा क्यों? अरे भगवान को तुम जानता नहीं, अचिंत शक्तिशाली है, तर्क से भी अतीत है, क्यों उनसे कैसी अच्छा है? वो क्यों सब कुछ जानते हैं, तुम जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे भी क्यों का वो बहुत ऊपर है, इसलिए करते हैं। उसको कह दिया गया तत्तु लीला, भगवान की इच्छा लीला, उनका मनोरंजन, ये समस्त समझ लो, ये विश्व जो कुछ है ये सब बोलो वैकुंठ धाम सब उनका मनोरंजन ही समझ लो, एक तरह से नहीं समझते हो इसलिए समझो, ये यहीं से आरंभ करो, तो ये सब लीला ही समझो। तो इसलिए वहां से ये जीव निकले जो कि माया में भी बद्ध नहीं है और मुक्त भी नहीं है, एक बीज का है। और वही जीव जब निकलते हैं उनको ये पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं, उनके स्वरूप में ये रखते हैं कि तुम दोनों तरफ में देखने योग्य हो, इधर भी देख सकते हो उधर भी देख सकते हो, अब तुम्हारी स्वतंत्रता के ऊपर में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखो तुम्हारी माँ और पिताजी खड़े हैं और इधर मैं तुम्हारी पत्नी खड़ी है, पत्नी कह रही है कि मैं इनके साथ में कभी नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ, उसे मैं मर जाना बल्कि बेहतर समझती हूँ। और पिता माता कुछ नहीं बोले, कातर दृष्टि से बेटे की तरफ में देख रहे हैं, बेटा चिंतन करता है कि क्या करूं, सबके लिए नहीं, ऐसे मैंने कुछ लोग हैं ऐसे, तो वो चिंतन करता है, बेटा सोचा मैं क्या करूं, वो सोचता है इस माता पिता की सेवा के लिए मैंने शादी की और इन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है मैं इनका ऋण कभी जन्म जन्मांतर में नहीं चुका सकता। स्त्री को समझाने की चेष्टा करता है कि देखो तुम इनकी सेवा करो, हमको भी सेवा कर ले, किंतु अपनी मांग पर वो अड़ी रहती है। अब उस समय हमारा स्वतंत्र, उसी समय में हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग अथवा सदुपयोग करेंगे, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? दुर्बल लोग होते हैं, पत्नी को नहीं समझा पाते, माता पिता की सेवा भी छोड़ देते हैं, यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ। इसी तरह से जीव के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी है, उनको शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, स्वतंत्र रूप में कुछ भी कर सकते हो, किंतु देखो यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके और तुमने बुरे कर्म किए तो मैं पीस दूंगा, ये भी समझ लो, ये दंड का विधान है, ये दंड दूंगा, और यदि स्वतंत्रता का सदुपयोग किया तो आनंद ही आनंद तुम्हारे लिए है। दोनों चीजें दे करके समझा बुझा करके स्वतंत्रता दे दी। उसी समय में जी एक क्षण के लिए उसको ये समय मिलता है, इसलिए उसको तटस्था शक्ति कहते हैं। परवार है ना, उसकी धार होती है, वो भी कुछ चौड़ी हो सकती है धार भी, किंतु तटस्था शक्ति उसे भी सूक्ष्म है, इसे समझो। जिस तरह से तलवार की धार पर ऊपर से हम सरसों का दाना फेंके खूब बैलेंस से, बीच में ठीक गिरे तो वो दाना किधर जाएगा? बैलेंस साधने पर भी या तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, जाएगा जरूर, वहां पर ठहर नहीं सकता, तो इधर क्यों गिरा? तो कहेंगे बैलेंस इधर में गिरा, यही तो कहें ना, और क्या कहेंगे, यहां में गिराने के समय कुछ बैलेंस इधर हो गया, क्यों बैलेंस हुआ? दूसरों के लिए तुमने बैलेंस उधर में क्यों गिराया जो इसको इधर में गिरा, उसके हाथ में भी नहीं है, यही है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का यदि दुरुपयोग करके हमने माया की तरफ में देखा, भगवान चुपचाप खड़े हैं देख रहे हैं, और वो ऐसी जगह है जहां पर कि एक सेकंड के लिए भी चुपचाप नहीं रह सकते हैं, है इधर जाना होगा ना इधर जाना होगा, उसी समय में जी ये कल्पना करके बतला रहे हैं इसलिए जीव तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होकर के तट पर एक सेकंड भी नहीं खड़ा होकर या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। हम लोग उसमें से हैं जो कि वहां से माया की तरफ जाए, बस इतना ही अभी समझो, इसे अभी कभी मत समझो। वो समझेगा कब, जबकि भजन करते 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 उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब हम समझेंगे। अभी ये समझो ये घर में आग लगी है, बस इतना ही समझो, और आग को बुझाना है। आग कैसे निकली, कैसे हुई, बीड़ी पीने से हुआ, सिगरेट से न हुआ, न बिजली के तार जल जाने से हुआ, न किसी ने आग लगा दी जानबूझ करके, नहीं कहीं पेट्रोल से आग लग गई। अनुसंधान पीछे करना, वो पुलिस का काम है पीछे आकर के अनुसंधान कर, तुमको तो अभी किसी हालत में इसको बुझाना है। इसलिए जो साधारण थ्योरी यही है कि जब जीव भगवान की सेवा में रहता है इसको नित्य धर्म कहते हैं। यही भगवान की सेवा ही जीव का धर्म है, चाहे वो बद्ध हो चाहे मुक्त हो। भगवान की सेवा नहीं करने के वजह से इस संसार में गिरा है, तो इसका मतलब नहीं कि गोलोक से गिर गया। गोलोक से तो कोई गिर ही नहीं सकता, क्योंकि सतत पार होकर के है, वहां से गिरने का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु गिरा हुआ हम देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम गिरे हुए हैं हमको इसे निकलने का प्रयास करना चाहिए। कैसे निकलेंगे, जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास, जीव रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव नित्य दास कृष्ण र तटस्था। ये तटस्था शक्ति के संबंध में हमने कुछ एक हिंट दिया। तो अब जीव का स्वरूप ये है कि हम भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, हमारा पैर थक जाता है किसी ने आकर के हमारा पैर धोता है, ये हमारी सेवा, भगवान का पैर थकता है कि नहीं। अच्छा, हम बाहर से आते हैं भूख लग जाती है, कोई अच्छी अच्छी चीजें लेकर के हमको खिलाने के लिए देता है, ये हमारी सेवा हुई ना। भगवान को भूख लगती है कि नहीं, हमको बूढ़ा अवस्था में मैं दुबल हमको पकड़ करके, कभी रामचंद्र जी को कभी इनको कभी उनको पकड़ करके, सब भगवान को ऐसे कभी बूढ़ापन और दुर्बलता होती है कि नहीं, तो इसकी भी समझ। भगवान को कभी कोई दुख होता है कि नहीं जिसमें उनको सांत्वना दे करके सेवा की जाए, तो भगवान तो आत्माराम है, आप तकाम है, समस्त आनंदों से भरे हुए हैं, उनको किसी की चीज की सहायता की जरूरत नहीं है, आप क्या सेवा करेंगे, आप सेवा नहीं कर सकते। तो फिर क्यों कहा गया जो जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास और उनकी सेवा करता है। जहां पर प्रेम होता है ना वहां पर एक भगवान का स्वभाव भी बदल जाता है। यशोदा मैया की बहुत दिनों से लालसा जी हमको एक बेटा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शक्तिमान और सब प्रकार से योग योग सब प्रकार से गुण हमको एक बेटा। कृष्ण ने देखा कि हमारे समान तो कोई है ही नहीं, कृष्ण स्वयं उनके बेटे के रूप में आए। यशोदा जी ने कहा जिससे इसको भूख लगी हुई है उसको लेकर के गोदी में अपने स्तन में लगा दिया, तो कृष्ण को भूख लग गई। सुंदर मक्खन निकालू, गोपियां सब निकाल रही हैं, आज इसको कृष्ण को खिलाऊं। उनके पहले उनको भूख लगी उनके घर में चोरी करने के लिए। भगवान को कोई भी इच्छा तमन्ना आशा जो कोई हमारी सेवा कर दे उनमें किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु जीव की जब उनको सेवा करने की जरूरत जबकि लोभ होता है तो भगवान को वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं उनके, उनको प्रसन्न करने के लिए। उनको अपनी खास जरूरत नहीं है, मुक्त महापुरुषों को भी क्या जरूरत है। सुखदेव गोस्वामी के पैर थकते होंगे कि नहीं, उनको कोई खाने पीने कपड़े लत्ते टॉर्च घड़ी अंगूठी या कोई भी संसार की चीज की कोई कमी है कि नहीं, जिससे उनकी उनकी क्या सेवा करेंगे, कर सकते हैं, एक सेवा कर सकते हैं क्या, यदि उनको हमने देखा और उनको देखते ही ये कहना आरंभ किया, राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद। सुखदेव जी गोस्वामी जी खड़े हो जाएंगे और उसके देखने लगेंगे, और यदि नहीं होगा तो फिर वो हाथ उठा देंगे और वो भी राधा रमन हरि गोविंद गा करके नाचने लगेंगे और उसको अपने अंक में लेंगे, आज तुमने हमको जीवन दान किया। ये सेवा। यदि ये सब भगवान की सेवाएं हैं मुक्त महापुरुषों की, ऐसा ही देख करके हमको लोभ होगा तब तो ये भक्ति होगी, इसके अतिरिक्त और किसी चीज में भक्ति नहीं है। ये सेवा की वासना होती है तो भगवान को भूख लग जाती है, जिस सेवा की वासना होगी ना भगवान को उसी चीज की भूख लग जाएगी, उनको किसी चीज की भूख नहीं लगी। सबरी के बेर की भूख लग गई, दुर्योधन के घर में मेवे और क्या क्या लगे हुए हैं, उनको भूख नहीं लगी। उनको भूख लगी केले की छिलका खाने की, और कहां उनको मिला, विदुरानी के घर। बतलाओ तो उनकी कैसी भूख निराली। इसलिए हम लोग कैसी सेवा कर सकते हैं, यदि उनका नाम कीर्तन करते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, उनमें प्रेम करते हैं, उनके प्रति प्रीति रखते हैं, तो इसी के द्वारा वो वशीभूत हो जाते हैं। ये उनकी सेवा की जरूरत। गुरु को भी ऐसे ही समझिए, गुरु को अपने अंग की, अपने भूख की, पेट इत्यादि की सेवा से प्रसन्न नहीं होते जितना किसी एक शिष्य को देखेंगे आज ये भगवान के भक्ति में प्रमत्त हो रहा है, देखकर के उनका हृदय एकदम फूल उठेगा। ये ऐसा होता है, रुपए पैसे से नहीं, संसार के किसी द्रव्य से भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं यदि सद्गुरु हों। वो देखेंगे ओ इसकी सेवा की, कृष्ण की वासना, वैष्णव की कैसे सेवा कर रहा है, ठाकुर जी की कैसे सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा कैसा कर रहा है, नाम कीर्तन में, स्मरण में, चिंतन में कैसा एकदम मग्न हो गया देख करके, और अपने संग से दूसरों को भी भगवान की भक्ति में मोड़ देता है, इसको देख करके वो प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान की सेवा जो है, जो गोलोक बैकुंठ धाम में होती है, उसको कहते हैं नित्य धर्म जीवों का ये सेवा। इस जगत में जब आ जाते हैं तो जीव का जो वह धर्म है कौन सी, भगवान की सेवा। जैसे यशोदा जी सेवा कर रही है, सखा लोग सेवा कर रहे हैं, गोपियां सेवा कर रही हैं, गायें उनकी सेवा करती हैं, ब्रज की भूमि उनकी सेवा करती है, वही सेवा जब इस जगत में आता है तो वो आच्छादित हो जाती है माया के द्वारा, तब वो जो कर्म करता है उसको कहते हैं अनित्य धर्म। अनित्य धर्म किसको कहते हैं, जैसे माता पिता के शरीर को ही माता पिता मान लिया, स्त्री के शरीर को पति के शरीर को ही, जड़ शरीर को ही पति मान लिया, उसकी सेवा करते हैं। असल में ये सेवा की वृत्ति कहाँ की है, उस जगत की ना? उस जगत में कृष्ण की सेवा करता था, वो वृत्ति नष्ट नहीं होती किंतु विकृत हो गई, अब इस जगत के चीजों पर लग गई, इसलिए इसको कहते हैं अनित्य। अब इसकी व्याख्या से समझिए, इस प्रकार से है, कठिन विषय किंतु इसमें प्रवेश करने के लिए इसे अब सहज उपाय नहीं है, जितना मैं सहज कर रहा हूं इसे सहज हो ही नहीं सकता। नित्य धर्म तो वह है जो भगवान की यशोदा इत्यादि जो सेवा कर रही है, गोपियां सेवा कर रही है, वो नित्य। नारद जी नारायण इत्यादि की सेवा करते हैं, वो नित्य सेवा है। और अभी हमने जड़ वस्तु को ही वो मान करके पति पुत्र भाई बंधु सखा, ये अनित्य धर्म है, क्योंकि ये शरीर भी आज है कल नहीं रहेगा, आज जो पति है वो चला जाएगा, स्त्री भी चली जाएगी, बेटा भी नहीं रहेगा, बाप भी नहीं रहेगा, उस समय में ये धर्म कैसे होगा, इसलिए इसको अनित्य धर्म कहा। किंतु वो जो सेवा की वृत्ति है वो नित्य है, किंतु लग गई है दूसरे वस्तु पर इसलिए अनित्य हुआ। एक बीच में एक और शब्द है नैमित्तिक धर्म। ये नैमित्तिक क्या है, नित्य और नित्य किसको कहते हैं, जैसे आप लोग पानी है, पानी कैसा होता है, तरल होता है, और अत्यंत ठंडा होने से वो क्या होता है, उसमें पानी रख देते हो तो बर्फ बन जाता है, फ्रिज में बर्फ, क्यों, उसमें इतना ठंडक है, आर्टिफिशियल रूप से उसको ठंडा कर दिया है कि वो जम जाता है। तो वो पानी जो था वो तरल था, वो अपने स्वरूप धर्म में था, और जब जम गया तो क्या हो गया, अब वो कड़ा हो गया, और उस बर्फ को टुकड़े को लेकर के किसी को मारो तो सिर फट जाएगा, आदमी मर भी जाएगा, और पानी से ऐसे मारो तो पानी से प्यास बुझ जाएगी, और बर्फ में भी आप पड़े रहें और वहां पर पानी नहीं है तो बर्फ से आप प्यास नहीं जाएंगे मरेंगे, बल्कि गल करके उसमें मर जाएंगे ने? इस तरह से जो नित्य धर्म हमारी भगवान की सेवा थी, अभी किसी कारण से निमित्त माने कारण, उस कारण के वजह से, जैसे पानी कारण के वजह से, शीत के कारण ठंड के कारण वो जम करके बर्फ हो गया, उसका धर्म भी अभी विकृत हो गया, कैसा हो गया, पहले था तरल अब क्या हो गया, हार्ड हो गया, कड़ा। उसी तरह से जीव भगवान की सेवा करता था, ये उसका नित्य धर्म था, और वो रूपांतर होकर के इस जगत में चला आया, इसको कहते हैं नैमित्तिक। इसी से अभी हमारा नैमित्तिक धर्म है। अब इसको थोड़ा सा और एक दृष्टिकोण से देखिए, इस जगत में हम साधन करते हैं, वो सेवा तो हम कभी मिल नहीं रही, इसलिए जिस धर्म में भगवान की नित्य सत्ता है और जीव की नित्य सत्ता है और नित्य उपाय से श्रवण कीर्तन इत्यादि से भगवान के नाम से उनकी उपासना करता है, इसको नित्य धर्म कहते हैं। अभी किंतु साधन है, आ रहा है समझ में, इस जगत में रह करके कृष्ण नित्य हैं, मैं भी नित्य हूं, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए साधन के रूप में भगवान का नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, ये नित्य धर्म है। जीवात्मा को मानते हैं कि भगवान का सेवक है किंतु अभी बद्ध है, किंतु है नित्य, भगवान भी नित्य है। जिस धर्म में जीवात्मा भी नित्य नहीं है, भगवान भी नित्य नहीं है, और मनमाने रूप में उनकी उपासना इत्यादि करते हैं, ये सब क्या है, अनित्य धर्म है। जैसे बहुत से ऐसे धर्म हैं जिनमें भगवान का कोई रूप ही नहीं माना जाता, मंदिर तो है, गुरुद्वारा है, ईसाइयों का वो होता चर्च है, भगवत तत्व से कोई भी संबंध नहीं वहां भगवत तत्व, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो कुछ है ही नहीं है। अब उसमें भगवान की नित्यता नहीं है, और जीवात्मा इसकी भी नित्यता नहीं है, और उस समय में जो क्रियाएं होती हैं ये अनित्य हैं। अब बीच वाला एक और है नैमित्तिक, अब इसको समझ ली, जिस धर्म में भगवान की नित्यता है और जीव की भी नित्यता है किंतु श्रवण कीर्तन नहीं कर करके दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं मनमाने रूप में, कभी चंडी कभी दुर्गा कभी गणेश कभी कुछ कभी संतोषी मैया इत्यादि, या अपने मन से जो कुछ, कोई सांप की पूजा करता है, कोई पर्वत की पूजा करता है, कोई पत्थर की पूजा करता है मनमाने ढंग से, ये बीज का एक है, इसमें आत्मा की और परमात्मा की नित्यता नहीं है, इसलिए ये सबको अधर्म कहा गया। और बीच में आत्मा की नित्यता है, भगवान की भी नित्यता है, किंतु जो उपाय अवलंबन कर रहा है अभी ये अनित्य है, इसलिए बीच का ये हो गया। इसलिए हमको नित्य धर्म में प्रवेश करने के लिए ये समझना होगा कि अभी हम संसार में हैं तो हमारी प्रीति तो नष्ट नहीं हुई है, किंतु प्रीति अभी जड़ पर लगी हुई है, और आत्मा की उपलब्धि नहीं है, परमात्मा की उपलब्धि नहीं है, ठीक रूप में उनका कोई विचार नहीं है, उस समय जो कर रहे हैं ये सब अनित्य धर्म है। इसी चीज को जैव धर्म में हमने पहले और दूसरे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा समझाया है, हमारी वृत्ति कभी नष्ट नहीं हो, कुत्ते भी होंगे ना, कुतिया को अपने बच्चे को प्रेम करेंगे, ये नष्ट नहीं होने का, और सब बदल जाएगा। इसीलिए हम लोगों में जाति पाति इत्यादि ये सब कुछ नहीं दिया गया, जीवात्मा की नित्यता भगवान की नित्यता दिया गया, बस इसी को विचार किया गया, ये जाति का धर्म, ये सिख धर्म हिंदू धर्म या ये सब नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म उसके बहुत निकट है सनातन धर्म, इसलिए उसको भी नित्य धर्म में ले लेते हैं। अब थोड़ा सा हल्का चीज रख चले तो तुम बोलो, बोलो तो पांच बोलो तो पैंतीस जीवनों की भक्ति में कुछ सांसारिक कामना वासना होती है, अर्थ की लालसा, समृद्धि की लालसा, इस तरह से स्वर्ग की लालसा, कोई भी कामना हो तो वो भक्ति नहीं है, इसलिए ध्रुव जी की भक्ति को भक्ति भगवान उसके के द्वारा वशीभूत नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, उनको उसकी कामना को पूर्ण करके बस चुप हो जाए, उसके द्वारा उसको जो फल मिलेगा सुख या दुख उसके लिए वो गाइया। दूसरी बात, प्रहलाद महाराज जी हैं, वो सबके अंदर में भगवान को देखते हैं और भगवान के अंदर में सबको देखते हैं, कोई भी लालसा नहीं है कुछ भी। भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो, अरे मैं बनिया नहीं हूँ, आप यदि मांगने की हमारे अंदर में इच्छा है इसीलिए आपने हमसे कहा कि मांग लो, प्रभु आप कृपा करके वो मांगने की इच्छा भी हमारी, ये कैसी भक्ति भी ना। और सर्वत्र भगवान को देख रहे हैं, कोई कामना वासना नहीं है, स्वर्ग की भी नहीं, मुक्ति की भी नहीं, किसी किसी कामना, ये भक्ति शुद्ध भक्ति। किंतु इसमें एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है कि प्रहलाद महाराज जी का भगवान, उनको भूख नहीं लगती, उनको सेवा की कोई जरूरत नहीं है, जगत की रक्षा करने वाले हैं और उनके अंदर में भी तो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर मत में वो प्रभु है, इसलिए जगत के आराध्य है। इसलिए अपने प्रभु की क्या सेवा करेंगे, देखते हैं कि तो सब तरह से पूर्ण है। किंतु हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी क्या करते हैं, सीताजी को चोरी हो जाती है, जाते हैं जैसे इनसे नहीं होगा हम जाकर के खर्च खबर ले आए और वहां से सीताजी का पता लगा कर आए, उनका पैर धोते हैं, जो जब जरूरत होती है हनुमान जी की सेवा की वृत्ति देख करके भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है और उनकी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। प्रहलाद महाराज जी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए प्रहलाद महाराज जी की अपेक्षा हनुमान जी की सेवा, इसमें सेवा है। इस सेवा की दृष्टि से गोपियां सबसे महान है, वो ऐसी सेवा करते हैं जो हनुमान भी नहीं।